તારીખ 31/3/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 151 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 104
151 પ્રશ્ન છે. કાલે પૂછ્યું તો આ પ્રશ્નો ઉઠાવેલા ને પ્રશ્નો થયેલા છે, કોઈ પ્રશ્નો ઠીક કર્યા છે સંકલન મેં થોડા વ્યવસ્થિત કિયા હૈ ઉતની બાત હૈ. તો પ્રશ્ન મેં કિસીને પૂછા હૈ કે શ્રીમદજી લિખતે હૈ કોઈ પત્ર મેં કે અપના મન સે કિયા હુઆ સ્વરૂપ કા નિશ્ચય માનને કે બજાય જ્ઞાની કહેતે હૈ યહ નિશ્ચય માનને મેં કલ્યાણ હૈ. ક્યા હૈ શાસ્ત્ર પઢ કર કે ઓર કુછ સુન કર કે પ્રવચન વગેરે મન સે આત્મસ્વરૂપ કા નિશ્ચય કરતા હૈ કે આત્મા એસા હૈ, આત્મા એસી હૈ, આત્મા એસી હૈ, ઓર એસા માન્યતા કર લેતા હૈ. વો ઠીક નહીં હૈ. જ્ઞાની જૈસા કહેતે હૈ એસા માનના, તો ઉસ વિષય મેં સ્પષ્ટીકરણ ચાહા હૈ કે ઇસકે પીછે ક્યા કહેના ચાહતે હૈ. સમાધાન, જ્ઞાની ને યથાર્થ સ્વરૂપ સમજ કરકે કિયા હુઆ નિશ્ચય યથાર્થ હૈ. જ્ઞાની ને સ્વરૂપાનુભવ કરકે ઉનકા નિશ્ચય મેં તો સ્વરૂપ કા અનુભવ રહા હૈ ઓર નિશ્ચય ભી અનુભવાન સે કિયા હૈ, મન સે નહીં કિયા હૈ. સ્વરૂપ નિશ્ચય અનુભવાન સે હોતા હૈ, મન સે નહીં હોતા હૈ. જૈસે ખાને કી ચીજ ચખને સે માલૂમ પડતી હૈ, દેખને સે યા સુનને સે માલૂમ નહીં પડતી હૈ. કોઈ સુના દે કે ચીજ બહોત બઢિયા હૈ, ઇસસે ઉસકા જ્ઞાન નહીં હોતા હૈ, પર દેખ લેને સે ભી નહીં હોતા હૈ, ચખને સે હોતા હૈ. વૈસે આત્મસ્વરૂપ અનુભવ કા વિષય હૈ, મન કે વિચાર કા વિષય નહીં હૈ. ઇસલિયે ઉસકા અનુભવ સે હી જ્ઞાન કરના જરૂરી હૈ, તભી ઉસકા ફાયદા હૈ, તભી ઉસકા ફાયદા મેને જો શાંત. તેરા મન સે કિયા હુઆ નિશ્ચય ઉસમે ભૂલ હો સકતી હૈ યા કલ્પના હોતી હૈ, ભૂલ હોતી હૈ ઓર કલ્પના હોતી હૈ, ક્યોંકિ અનુભવ તો હુઆ નહીં. જો અનુભવ સે જ્ઞાન મેં લેને કી ચીજ હૈ, તો બિના અનુભવ કલ્પના કરે, ભૂલ કરે, યે સંભવ હૈ. ઇસલિયે ઇસ અનુભવ સે હી ઉસકા જ્ઞાન હોના જરૂરી હૈ, મન સે વિચાર સે નહીં. હા, યે નિશ્ચય ભી પક્કા રખના કે અનુભવ કા હી વિષય હૈ, વિચાર કા વિષય નહીં હૈ, અનુભવ કા હી વિષય, વો નિશ્ચય ભી પક્કા રખના. મુજે એસા બરાબર લગતા હૈ परंतु ज्ञानी के कहने का क्या आशय है? भले मुझे बराबर लगता है, लेकिन ज्ञानी का कहने का आशय क्या है वो जगह रखनी चाहिए, वो अवकाश रखना चाहिए। भले अपने को बराबर लगता हो, फिर भी ज्ञानी को गुरु को क्या कहना है, इसका क्या रहस्य है, ये विचार करके मिलान करके स्वयं को नक्की करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। क्या बोले, कहाँ तक जाना चाहिए कि उसका जो रहस्य है, मैंने पारमार्थिक रहस्य है, उसमें आत्मकल्याण कैसे सिद्धता है, वहां तक पहुंच करके जिसका विचार करके और अपने परिणामों से मिलान करके वो बात प्रयोग की होगी। मिलान करना वो बात प्रयोग की होगी, अपने परिणाम से भी मिलान कर ले और फिर निश्चय करना चाहिए। अपनी कल्पना से निश्चित किया तो भूल का अवकाश है। तर्क से, अनुमान से कल्पना करके निश्चय किया होगा, उसमें कल्पना में भूल आ जाएगी। कल्पना है वो एक प्रकार का विपर्यास है, और कल्पना का फल दुख है, विपर्यास का फल दुख है, ऐसा समझना है।
તો જ્ઞાન નો પ્રગટ સ્વભાવ શું છે એ પકડવા આવી જાય।
અહીંયા તો સ્વરૂપ નિશ્ચયમાં, સ્વરૂપનું જે જ્ઞાન સ્વભાવપણું છે, જ્ઞાન સ્વભાવથી નિશ્ચય થાય છે, અને જ્ઞાન સ્વભાવથી નિશ્ચય થતાં સ્વરૂપનું જો અનંત સુખ હૈ, ઉસકા ભી નિશ્ચય સાથ સાથ હોતા હૈ, સ્વરૂપ શાશ્વત ધ્રુવ હૈ, ઉસકા ભી નિશ્ચય સાથ સાથ હોતા હૈ। તો ઉસસે ક્યા હુઆ કે એક તો મેરા નાશ કભી હોને વાલા નહીં, એક દૂસરા મેરે સુખ કે લિયે મુજે કહીં જાને કા નહીં, મેરા સુખ મેરે નહીં બસ। तो ये तसल्ली हो गई कि मेरा नाश कभी नहीं, मेरा अभाव होने वाला नहीं, मेरी मृत्यु होने वाली नहीं, एक गारंटी हो गई। दूसरा निश्चय हो गया ये, दूसरा कि मेरा पूरा पूरा सुख, बेहद सुख मेरे में है, जितना भी मेरे में मैं एकाग्र होऊंगा मुझे सुख अंदर से अनुभव होगा। तो दो बात से फिर सभी प्रकार की चिंता आकुलता खत्म हो जाती है। निश्चय करना, मिलान करके अपने परिणमन के अंश से मिलान करके निश्चय करना। સ્વરૂપ જેવું છે એવું નથી, બીજી રીતે એની કલ્પના થાય છે, એટલે વિપરીત થયું કે નથી। જેવું સ્વરૂપ છે એવું જ્ઞાનમાં નહીં આવ્યું, અને બીજી રીતે એને જ્ઞાનમાં નક્કી કરી લીધું, તો વિપર્યાસ થયો કે ન થયો, વિપર્યાસ થઈ ગયો। अपनी कल्पना से नक्की करे तो भूल का अवकाश है। खुद स्वच्छंद से नक्की किया हुआ है, खुद ने अपने स्वच्छंद से वो नक्की किया हुआ है, उसमें स्वच्छंद ले लिया। मिलान करना चाहिए, ज्ञानी का अनुभव और अपना अनुभव दोनों का मेल खाना चाहिए। अनंत काल से मार्ग अनजाना है, अनंत काल से मार्ग मिला नहीं है, क्योंकि अनजाना मार्ग है इसलिए मिला नहीं है, बहुत भटका है। धर्म साधन भी बहुत किया है लेकिन आत्म कल्याण हुआ नहीं, मोक्ष हुआ नहीं, मोक्ष मार्ग मिला नहीं। तो उपाय मार्ग मैंने उपाय वो तो अनजाना है।
पर एक प्रश्न खड़ा होता है, शास्त्र के अनुरूप ही वो मुमुक्षु अपना कार्य कर सकते, और सत्पुरुष का वो सानिध्य नहीं करता है, तो वो विपर्यास नहीं है?
क्योंकि शास्त्र में पूरी बात तो नहीं है, शास्त्र में जो लिखावट है वो थियरी है, क्या है व्याख्या है, व्याख्या कहो या थियरी कहो, तो प्रैक्टिकल बात तो रह जाती है। और जो कुछ विशेष रूप से रहस्यभूत और पारमार्थिक बात समझनी है वो तो प्रैक्टिकल साइड की है, थियरी है वो तो एक प्रैक्टिकल का आउटलाइन है, क्या है आउटलाइन है, जैसे हमें कोई नक्शा मिलता है तो नक्शा में कोई गाड़ी पार्क थोड़ी होती है, नक्शा पर नक्शा के मुताबिक हम चल सकते हैं, लेकिन नक्शा में चल सकते हैं क्या?
नहीं,
वो तो बनता नहीं। मकान का नक्शा बनाते हैं, उसमें बेडरूम, इधर बेडरूम आ गया तो वहां क्या, वहां सो सकते हैं क्या? हाँ, नक्शा में कुछ नहीं होता, नक्शा के मुताबिक काम करना पड़ता है प्रैक्टिकल साइड से। ऐसे शास्त्र तो एक नक्शा है, फिर कैसे चलना वो बात, जो उस मार्ग पर चले हैं उनसे चलने को सीखना पड़ता है। बच्चे को किताब दे दिया लेकिन बिना मास्टर कोई पढ़ लेगा बच्चा? को किसको कहना वो बताना पड़ेगा, पूरा अल्फाबेट की किताब दे दिया बड़े बड़े अक्षर के, लेकिन क किसको बोलना, खे किसको बोलना, वो तो उसको बताना ही पड़ेगा ना, वो अपने आप कैसे समझेगा कि ये क है वो और ये ख है। हाँ, और ये मार्ग तो सूक्ष्म है, अंतर्मुख होने का जो मार्ग है वो बहुत सूक्ष्म है और बिल्कुल हमारे अनंत काल के परिणमन से विरुद्ध है। हमारा अनंत काल का परिणमन बहिर्मुख चल रहा है और ये मार्ग अंतर्मुख का है, उल्टा है। तो हम उल्टे तो बहुत चले हैं, अनंत काल से उल्टे ही चले ही समझो। अब सुलटा होने में हमको अनजाने मार्ग में हमको अनुभवी पुरुष की जरूरत पड़ती है। अनंत काल से मार्ग अनजाने हैं, तुम कुछ समझता नहीं है, उस विषय में कुछ समझता नहीं है, इसलिए अपने आप नक्की कर लें ऐसी वस्तु है, ऐसा मार्ग है, ऐसा मुक्ति का पंथ इस प्रकार से है, ऐसे निक्की करे तो उसमें भूल हो जाती है। क्या होती है? भूल हो जाती है। अपने आप निक्की करने को जाता है तो भूल हो जाती है। खुद तो समझता नहीं है और फिर निक्की कर ले तो कहां से नक्की होगा? और जो नक्की होगा वो गलत हो जाएगा। जैसे कि अपने संप्रदाय में ही चलता है कि कोई पूजे में लग जाता है घंटों तक, मान लेता है कि हम धर्म करते हैं, कोई उपवास व्रत नियम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि धर्म हो गया, कल्याण हो गया, दीक्षा ले लेते हैं, त्याग कर देते हैं, दान दे देते हैं, मान लिया कि धर्म हो गया। तो अपने आप मुक्ति का पंथ, ये मुक्ति का मार्ग ऐसा नक्की कर लेते हैं, लेकिन उसमें भूल रहती है। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और उसमें वो क्या मिलान करते हैं कि देखो ज्ञानियों ने भी ऐसा किया है, जैसा हम करते हैं वैसा ज्ञानियों ने भी किया है, इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। महावीर स्वामी ने भी 12.5 साल तपश्चर्या की थी तो हमको भी करनी चाहिए। ऋषभदेव भगवान ने भी वो क्या कहते हैं वर्ष तप किया था तो हम भी वर्ष तप करें। तो क्या है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े महात्मा तीर्थंकर आदि हैं, उन्होंने जो किया वो हम करें तो उसकी नकल करने को ले जाते कर लेते हैं, नकल करते हैं। उसमें अंदर की रहस्य वाली असल बात क्या है उसका पता नहीं रहता है तो वहां भूल हो जाती है। गुरुदेव दृष्टांत देते थे, ठंडी जाड़े के दिन में कुछ लोग मुसाफरी कर रहे थे जंगल में, ठंडी बहुत थी, जाके ऐसे ठंडी खाते खाते चलेंगे तो मर जाएंगे। तो थोड़ा लकड़ी बकड़ी इकट्ठी करके जला करके हमारे तापना पाए क्या, हाँ सगड़ी बनाई, कुछ गर्मी घंटा भर लेकर के फिर चलना शुरू किया। तो कुछ बंदर लोग भी थे वहां, उनको भी बहुत ठंडी लग रही थी, उनको कहा कि अच्छा है ये लोग लकड़ी बकड़ी करके गर्मी पैदा करके ठंडी से आराम करते हैं, चलो अपन भी कुछ कर लें। तो उन लोगों ने भी लकड़ी बकड़ी तो इकट्ठी किया लेकिन अग्नि कहाँ से जलाए, माचिस तो उन लोगों के पास होती नहीं, तो उन लोगों ने वो जुगनू थे पकड़ पकड़ के डालने लगे, जुगनू को पकड़ पकड़ के डालने लगे। ऐसे तो कोई अग्नि जलेगी, लकड़ी जलेगी नहीं और ठंड जाएगी नहीं। तो ऐसे नकल करने से कोई काम नहीं होता है कि चलो तो उसने उपवास किया हम भी उपवास कर ले, वो भक्ति करता है तो हम भी भक्ति कर ले, ज्ञानी पर शास्त्र पढ़ता है तो हम शास्त्र पढ़ते, ऐसे काम नहीं होता है। नानी ने जो नक्की किया हो, गुरु ने जो कहा हो, वो बराबर ही है, वही बराबर है, ऐसा लेना पड़े। मेरी कल्पना नहीं चलेगी, उसका अनुभव बोलता है, मेरे को भी अनुभव में आना पड़ेगा। अब किस प्रकार से प्रवर्तना, अब किस प्रकार से प्रवर्तना, यह अपने आप से विचार करके स्वयं नक्की करें। नक्की तो स्वयं करना पड़ेगा कि मेरे को कैसा करना है, अब क्या करना है, उसका विचार करना पड़ेगा। और उसका निश्चय भी करना पड़ेगा। ज्ञानी ने जो कहा है, कहा हो, उसका रहस्य और आशय समझे, क्या बात लिया, दो शब्द लिया है, उसका रहस्य और आशय समझे। आत्मकल्याण कैसे हो वो बराबर रहस्यभूत बात रही है। सीक्रेट, रहस्य मैंने सीक्रेट है, और वो बराबर समझे तो यथार्थ है, तो यह यथार्थ है। अंधश्रद्धा से किसी के पीछे पीछे चले वो यथार्थ नहीं है। समझ करके, रहस्य समझ करके, आशय समझ करके निर्णय करे, वरना कल्पित है, नहीं तो कल्पित है। रहस्य पकड़ना चाहिए, आशय पकड़ना चाहिए। आप कहते हैं लेकिन इसमें आत्मकल्याण होता है किस तरह से, वो बताइए। वो बात रहस्य पकड़ने में नहीं आए, आशय समझने में नहीं आए, तो अपनी मति कल्पना से कोई कल्पना नहीं करना है। और वो आशय और रहस्य समझ में कब आता है कि जो ज्ञानी कहते हैं उसी अनुसार प्रयोग करें, अमलीकरण करें, तब विश्वास आता है कि ठीक बात बराबर बैठती है। तो उसमें अनुभवांश का मिलान होता है, तब रहस्य समझ में आता है और आशय पकड़ने में आता है, वरना नहीं आता है। मतलब ये हुआ कि ज्ञानी का मार्ग जो अनुभव का है, तो हमको भी अनुभव की लाइन पकड़नी चाहिए, तभी काम होगा। सबसे जो पहला स्टेज है वो वेदना का है। तो वेदना है वो विचार का विषय है या अनुभव का विषय है? अनुभव का विषय है। तो शुरू से ही अनुभव पद्धति है, काम करने की जो पद्धति है वो अनुभव की रही। अनुभव की तो बात आए नहीं, और पढ़ते जाए सुनते जाए, इससे क्या होगा? दो शब्द का प्रयोग किया है, एकदम मार्मिक बात है। ज्ञानी ने जो कहा हो उसका रहस्य और आशय समझे तो यथार्थ है, नहीं तो कल्पित है। आशय और रहस्य पकड़ने में नहीं आए समझ में, तो कल्पना हो जाएगी। और वो कब आएगा? वो कहते हैं उसी अनुसार परिणमन चालू करेगा तब। ये जो कृपालु देव ने लिखा 195 पत्र में कि ये वेदना और जुड़ना आने के बाद ही मार्ग की दिशा का अल्प भान होता है, और क्या करना वो बाद में समझ में आता है। इसका मतलब क्या है कि इसके पहले कल्पना करता है जी, परिणमन का लाइन हाथ में नहीं आया, अनुभव पद्धति में नहीं आया, तो कल्पना कर लेता है। ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए। विधि निषेध दोनों कल्पना कर लेता है, मार्ग की कल्पना करता है, नहीं वैसे आता ही नहीं। ये वेदना के बाद ही समझ में आता है कि क्या करना, इसके पहले समझ में आता ही नहीं। और वेदना विचार का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है, परिणमन का विषय है। વાત તો જરા એવી છે, પણ નાની જે રસ્તો બતાવે છે એ રસ્તે આપણે શરૂઆત કરવી જોઈએ કે આ આત્મા અનંત કાળથી પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે, એ પરિભ્રમણ કેમ મટે, પરિભ્રમણ કેમ થઈ રહ્યું છે, અનંત કાળથી પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે, શું કારણ થી, કિસ કારણ સે કર રહા હે, ઓર કેસે મિટે, ઉસકે પીછે લગે બિના, ક્યા કરના ક્યા નહીં કરના, કોઈ સૂઝ બૂઝ આયેગી નહીં, તો ઉસકે પીછે લગને મેં વેદના આયેગી, પહેલે વો અનુભવ હોગા, વેદના કા અનુભવ હોગા, ક્યા હોગા, વેદના કા અનુભવ। मुमुक्षुता बाद में शुरू होती है, और मुमुक्षुता की चरम सीमा, पूरी मुमुक्षुता आने के बाद फिर ज्ञान दशा होती है, मोक्ष मार्ग चालू होता है, और मोक्ष मार्ग पूरा होने के बाद मोक्ष होता है। तो अब तो जो मुमुक्षुता है उसका प्रथम चरण ये वेदना है, वहां ही नहीं आए, वेदना में भी नहीं आए, तो मुमुक्षुता चालू नहीं हुई, कुछ भी कर लिया क्या हो गया, कुछ भी किया तो क्या हुआ, कि कुछ नहीं हुआ, सब निकम आ गया, व्यर्थ हो गया। ये कोल्लू का बेल होता है ना, सुबह से शाम तक चलता है, हैं? कहाँ गया, वहां का वहां। ऐसे अनंत काल हमने धर्म साधन किए कोल्लू के बेल की तरह, वहां के वहां है, मुमुक्षुता भी चालू नहीं हुई। ज्ञान दशा की बात तो खैर बहुत दूर दूर की है, मुमुक्षुता भी चालू नहीं हुई। ज्ञानी ने जो कहा है उसका रहस्य और आशय समझे तो यथार्थ है, नहीं तो कल्पित है। अपने आप से किया हुआ निश्चय में भूल होती है, तो भूल होती है तो मार्ग बदल जाता है पूरा, उन मार्ग में जीव चढ़ जाता है, मार्ग मार्ग में नहीं आता तो उन मार्ग में चढ़ जाता है। ज्ञानी के कथन में बहुत आशय और गंभीरता भरी हुई होती है। देखो एक वचन में अनंत आगम रहे हुए हैं, ऐसी बात है। ज्ञानी के कहने में बहुत आशय और गंभीरता, गंभीरता मैंने गहराई बहुत है उसमें, अनुभव की गहराई है इसमें, क्योंकि यह निश्चय यथार्थ होता है, यह निश्चय अनुभव से निकला हुआ यथार्थ होता है। द्रव का स्वरूप, द्रव का स्वरूप मैंने अपने आत्मा का स्वरूप, निश्चय का स्वरूप, निश्चय मैंने मूल स्वरूप, और निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप, दोनों निश्चय में आता है, आत्मा का मूल स्वरूप और मूल स्वरूप के अवलंबन से जो शुद्ध अवस्था होती है वितराग भाव रूप, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। व्यवहार का स्वरूप मैंने गुणस्थान अनुसार शुभ भाव कैसे होते हैं उनका स्वरूप, निमित उपादान का स्वरूप जो गुरु ने कहा हो उस रीति से विचार करके, क्या गुरु ने कहा हो उस रीति से, अपनी रीति से नहीं, उस रीति से विचार करके नक्की करे तो यह बराबर है। यानी कि गुरु ने जो लाइन बताई उसी लाइन पे आगे जाना, अनजाने मार्ग में अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास करेगा तो गुमराह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। ये पूरा संभव है। अपनी मति कल्पना से शास्त्र पढ़े, कई लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे हैं, दिमाग वाले हैं, शास्त्र पढ़ने लग जाते हैं। अपनी मति कल्पना से शास्त्र पढ़े, फिर कल्पना करता है कि यहाँ ऐसा कहना चाहता है, यहाँ ऐसा कहना चाहता है। देखो ये भी एक, कोई सतर्क होता है तो विचार कर लेता है कि एक शब्द का तो 20 अर्थ होता है। क्या शब्दकोश देखे, डिक्शनरी देखे तो एक शब्द का 20 अर्थ होता है। अब शास्त्र में ये शब्द आया, इसका अर्थ क्या करना, मुझे क्या पता चलेगा? ये तो अनुभव का विषय है। तो गुमराह होने का, भूल होने का, कल्पना होने का पूरा अवकाश है। क्या मालूम पड़े वो क्या, उधर क्या कहना चाहते हैं? इसलिए अपनी मति कल्पना से शास्त्र पढ़ें तो शास्त्र समझ में नहीं आएगा, शास्त्र समझ में नहीं आएगा। शास्त्र है वो अनुभवी पुरुषों के अनुभव के बाद किए हुए कथन है। इसके नींव में अनुभव पड़ा है, कथन बार आया और अनुभव की लाइन पर नहीं गया तो कथन का अर्थ समझ में नहीं आएगा और कल्पना कर बैठेगा, कुछ न कुछ कल्पना कर बैठेगा, ये बात बन जाएगी। अपनी मति कल्पना से शास्त्र पढ़े तो शास्त्र समझ में नहीं आएगा। उसमें अपनी भूल होती है और कहीं कहीं खुद रुकता भी है, भूल भी होती है और कहीं रुकता है। रुकता मतलब क्या है? वजन चला जाता है, जहां वजन नहीं देना चाहिए वहां वजन चला जाता है, ये भूल हो जाती है। देखो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष में ये फर्क है। शास्त्र में सब बातें हैं लेकिन किस बात पर, किस अवसर में कितना वजन देना, वो बात नहीं आ सकते। वो बात तो प्रत्यक्ष सत्संग में ही मालूम पड़ती है, वो शास्त्र में नहीं आती है। किस बात पर वजन देना, कितना वजन देना और कब देना, वो बात नहीं आती। हाँ, जैसे कुछ दवाइयां प्रसिद्ध है हाँ, लेकिन डॉक्टर की जरूरत कहाँ पड़ती है कि भाई आपको कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद लेना है। तो सब उसको सूचना के अनुसार चलना पड़ेगा। तो दवा कब बंद करना है, किस तरह से बंद करना है, सब में उसकी जरूरत पड़ती है। उसमें अपनी भूल होती है, कहीं ना कहीं खुद रुक जाता है, अपनी इच्छा के अनुसार मति कल्पना से अर्थ करता है जीव। मति कल्पना से, एक तो अपना मति विपर्यास तो अनादि से चालू है, विपरीत संस्कार लेकर के तो परिभ्रमण कर रहे हैं, पर वो मति तो विपरीत काम कर रही है, उस विपरीत मति अनुसार अपन अर्थ घटन करने को जाएंगे तो विपर्यास हो ही जाएगा, भूल हो ही जाएगी, बहुत संभव है होता। बराबर समझ में आता है, आता है बराबर समझ में? ठीक है, कहीं समझ में नहीं आए तो पूछ लेना है, आ जाता है जब तक। ठीक है, जब देखो बहुत महत्व की बात करते हैं कि जिसको आत्मार्थता हो, क्या लिख बोला आत्मार्थता, मैंने क्या, एक आत्म कल्याण का ही प्रयोजन, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, न अनुकूलता चाहिए, न स्थान और मान चाहिए, दो गड़बड़ है, हमारा आत्म कल्याण है उतना ही हमारा अभिप्राय है। जिसको आत्मार्थता हो वो गुरु के कहा हुआ रहस्य अनुसार निश्चय करता है, आत्मार्थता चाहिए। क्या बात आई कि निश्चय करने में आत्मार्थता चाहिए, तो वो क्या है कि गुरु जो कहता है उसका रहस्य पकड़ करके निश्चय करेगा, और जिसको आत्मार्थता नहीं है वो अपनी मति कल्पना से चलेगा, वो फर्क पड़ जाएगा।
आत्मार्थी गुणों से ये लुप्त
होने का देगी, आत्मार्थता चाहिए, आत्म कल्याण करने के लिए आत्मार्थता चाहिए, तो क्या है कि मति उस तरह से काम करेगी कि मैं तो जानता नहीं, मैं समझता नहीं, वो क्या कहते हैं, इसका रहस्य को मैं नहीं समझूंगा तो मैं भटक जाऊंगा, ये बात समझ में आ जाती है शुरू से, वरना क्या है कि अपने आप करने लग जाता है तो गुमराह हो जाता है, भूल हो जाती है, सवाल ही पैदा नहीं होता, उनके कारण कार्य का समझ ही नहीं रहता, तो फिर वस्तु का स्वरूप ही नहीं रहता। कारण कार्य वस्तु का स्वरूप है,
ज्ञान भी आदि भी है, ज्ञान दशा के बाद भी कारण कार्य का संबंध,
हाँ गुणस्थान है, कारण कार्य मोक्ष मार्ग कारण है, मोक्ष इसका फल है, मुमुक्षुता कारण है, यथार्थ मुमुक्षुता कारण है, मोक्ष मार्ग इसका कार्य है, और ये चर्चा तो ज्ञानी करते हैं, चर्चा तो यानी खुद ही करते हैं। जिसको आत्मार्थता हो वो गुरु को कहा हुआ रहस्य अनुसार निश्चय करता है, कथन अनुसार नहीं, रहस्य अनुसार, ये बराबर है। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, स्वयं अपने यथार्थ मार्ग ग्रहण करके निश्चय करें कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, वो स्वयं नक्के करें, लेकिन गुरु के कहे रहस्य अनुसार निश्चय। व्यवहार का स्वरूप इस प्रकार से कहा है उसका मेल करके यथार्थ निश्चय करे। निश्चय और व्यवहार मैंने मुमुक्षुता में व्यवहार कैसा होता है, ज्ञान दशा में व्यवहार कैसा होता है, उसमें शुद्धता कैसी हो, मुमुक्षुता में निर्मलता कैसे आती है, सब उसका स्वरूप मेल करके मिलान करके भावों से मिलान करना चाहिए और फिर निश्चय करें। तो श्री गोपालुदेव ने जो कहा है कि ज्ञानी ने कहा हुआ वो निश्चय भी यथार्थ है, अपनी कल्पना से चलना नहीं है, वो बराबरी किया, समर्थन किया है, गोपालुदेव के वचन का समर्थन किया है, तो ठीक कहते हैं, बराबर ऐसा ही बात है, वरना तुमको भूल हो जाएगी और उन मार्ग में चल जाएगा। आशय और रहस्य की बात खास किया है, सिर्फ कथन को नहीं लेना है, आशय क्या है रहस्य क्या है वो पकड़ना चाहिए।
रहस्य पकड़ा हुआ पोते परिणाम में
आओ
रहस्य आशय पकड़े,
खुद को प्रयोग करना पड़ेगा तभी रहस्य समझ में आएगा, क्योंकि कथन में रहस्य छिपा हुआ है, कथन में शब्दार्थ में रहस्य नहीं है, वो कथन आत्म कल्याण में कैसे परिणमन कर सकता है, उस प्रकार का जो परिणमन का विषय है वो रहस्यभूत है, तो परिणमन से समझा जाता है, तो खुद को परिणमन करके उस बात को समझना पड़ेगा, ये बात हो गई।
तो अनुभव पद्धति में कौन सा
एकदम आशय एम छे के पोताना अनादि मति विपर्यास ने लक्ष्य में राखी नानीनी आज्ञाए चालवानो निश्चय करवो जोईए। જેથી સ્વચ્છંદ રોકાય, નાનીના વચનોમાં પણ જે રહસ્ય રહ્યું છે અથવા આત્મકલ્યાણનો આશય રહેલો છે તે આશય નાનીની આજ્ઞા અનુસાર પ્રયોગ કરીને પકડે તો યથાર્થ થાય, નહીં તો કલ્પનામાં કલ્પના એ ચડવાનો પૂરો અવકાશ છે।